हम जो सच है उसका ही समर्थन करेंगे। हम बुरे की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हम बुरे का समर्थन भी तो नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने जीवन को अच्छा बनाने निकले हुए हैं तो जहां जहां अच्छाई है उसका समर्थन करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छे बनने निकले हैं और अभी हम बुराइयों का समर्थन करते चले जावें, तब तो फिर हम कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। अच्छे बनने के लिए पहले जरूरी है कि जब मैंने बुराइयों को बुराई जान लिया है, पाप को मैंने पाप जान लिया है, तब मेरी दृष्टि में अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे धर्म मान लूं। भैया, पाप को पाप जान करके करेंगे तो एक दिन बच भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम पाप को पुण्य मान के करने लगते हैं उस दिन फिर बचना बहुत कठिन होता है। इसलिए कह कि ये दृष्टि तो हमें प्राप्त हो ही जानी चाहिए। परिग्रह को परिग्रह ही मान करके हम अपने पास रखे हुए हैं, परिग्रह में पुण्य है ऐसा मान करके अगर हम उसे रखते हैं तो वो परिग्रह हमारे लिए नीचे डुबाने वाला है। चक्रवर्ती अपार वैभव के बीच और गद्दी पर बैठे बैठे मरे तो चक्रवर्ती को भी नरक जाना पड़ता है, और अगर वही चक्रवर्ती उस अपार वैभव को छोड़ करके जिन दीक्षा ले ले तो उसी भाव से मुक्ति भी हो जाती। परिग्रह को परिग्रह माना उसने, आशक्त नहीं हुआ। इतनी सी ये वही सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सिर्फ दृष्टि बदल गई। कहीं कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन दृष्टि बदल जाने से तो पूरी सृष्टि ही परिवर्तित रूप में दिखाई पड़ेगी। मैं भेड़ चाल की वो घटना हमेशा सुनाया करता हूं लोगों को इस अवसर पर, वैसे सबको मालूम ही होगा, कुछ लोगों ने सुन भी रखी होगी। स्कूल में गुरुजी पढ़ाया करते थे बच्चों को, गांव का स्कूल था, और एक दिन गुरुजी पढ़ा रहे थे, जोड़ घटाना पढ़ा रहे थे। तब बच्चों को पढ़ाना हो, छोटे बच्चों को तो कैसा पढ़ाना पड़ता कि बताओ एक चॉकलेट और एक चॉकलेट मिलके कितनी चॉकलेट होंगी, वो फौरन कह देते कि दो, क्योंकि उनको मालूम। और आप ऐसे पूछेंगे तो नहीं बनेगा उनसे। तो ऐसे ही गुरुजी गांव के बच्चे हैं इसलिए ये सोच करके उनको पढ़ा रहे थे, पूछा कि बच्चों ये बताओ, एक बाड़े में 10 भेड़े हैं, उसमें से अगर एक भेड़ निकल जाए तो उस बाड़े में कितनी भेड़ें बचेंगी। कोई भी कह देगा 10 में से एक गया 9। और गुरुजी ने धोखे से उसी बच्चे से पूछ लिया जिसके घर में भेड़ें पली थी। सो जैसे ही उसको खड़ा किया और पूछा कि बता उत्तर क्या हुआ इसका, कहता 0, एक भी नहीं बचेगी। उसने कहा जी वो इतने दिन से सिखा रहे हम तुम्हें गणित, रहे तुम बुद्धू के बुद्धू, फिर से सुनो, एक बाड़े में 10 भेड़े हैं, उसमें से एक निकल गई, कितनी बची शेष। उसने कहा एक भी नहीं गुरुजी। मैं कहा तुम गणित नहीं जानते, तो उसने कहा कि गुरुजी गणित की तो आप जानो, भेड़ों की हम जानते, अगर एक भी निकल गई तो उसके पीछे सब निकल जाएंगी, एक नहीं बचेगी। ये कहलाती भेड़ चाल। हंसी आती इस पर अपन को, भेड़ों की चाल पर, लेकिन अपनी चाल पर कभी कभी हंसी नहीं आती। कि अपन भी तो ऐसे ही बिना विवेक के और कुछ भी करते चले जाते हैं, अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाते उसमें, अपना विवेक नहीं लगाते उसमें। जो आया जिसने जो समझा दिया, किसी ने कहा कि 3 चावल नहीं करना चाहिए स्थापना, हमने कहा बात तो सही, नई बात बता रहे हैं, हमने बंद कर दी, ले साहब स्थापना बंद। कितनी जल्दी कोई आया उसने जो भी प्ररूपण किया हमने उसको मान लिया और आंख मीच करके उसको करना शुरू किया। कल के दिन कोई और आया उसने कोई और प्ररूपण किया हमने वो मान लिया। अरे अपना कोई बेस है कि नहीं, हमारा अपना कोई कॉन्शियस किस चीज को अलाउ करता है ये हमने कभी देखा कि नहीं देखा। हमारी अपने भीतर भी तो चेतना है, उसमें कोई विवेक है कि नहीं, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, इदम करणीयम इदम आचरणीयम इदम ना करणीयम इदम ना आचरणीयम, ये मेरे विवेक से किसी के कहने सुनने से नहीं, ये दृष्टि मुझे प्राप्त करनी। फिर उसके बाद कोई भी कुछ भी कहता सुनता रहे मैं उसमें से अपने काम की चीज निकाल लूंगा, उलझूंगा नहीं। ये विवेक मेरे जीवन को सुलझाने वाली प्रक्रिया है, ऐसी सुलझी हुई दृष्टि है। आज हम छोटी छोटी चीजों में उलझ गए हैं, अपने ही राग द्वेष में हम उलझे हुए हैं, जबकि उस राग द्वेष से ऊपर उठने की दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए थी। वो कहलाएगी विवेकपूर्ण दृष्टि, जिसमें कि हम उलझते नहीं है संसार के प्रपंच में, संसार के राग द्वेष में नहीं उलझते हैं, बल्कि राग द्वेष से पार होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसी भावना के साथ मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त है कि हम सब एक ऐसी दृष्टि प्राप्त करें जिसमें अपना स्वयं का विवेक हो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत जिंदगी गुजर गई, सबके कहे अनुसार तो करके देख लिया, क्या मिला? ऐसा आता कभी मन में, टू एनफ, बहुत हुआ? एक ही व्यक्ति ने मेरे से कहा था एक बार गढ़ा कोटा के चतुर्मास के बाद कि बहुत सुन लिया आपको भी और बहुत सुन लिया बहुत लोगों को, अब सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको भी नहीं सुनूंगा, अब तो ये बताओ करना क्या है। हाँ, कब तक ये मन में आना चाहिए कि कितनी बातें जानता हूं अपने कल्याण की और ये कब तक जानता रहूंगा, जानते ही जानता रहूंगा या कि कुछ करूंगा अपने जीवन, ये विवेक मेरे भीतर जागृत होना है। अब आज ही से शुरू करता हूं, ऐसा हमारे भीतर एक सुलझा हुआ विचार उत्पन्न होना चाहिए, तब मानिएगा कि हाँ सचमुच हमें दृष्टि प्राप्त हो गई और अमूर्त दृष्टि प्राप्त हो गई। इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में विवेक आए और हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
तुमसे पावन उपकारी जीवन, हम आशु जल से चरणा पखारे, शिर विद्या सागर गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, क्षमा सागर जी महाराज की, भव्य सागर जी महाराज की।
विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने विचारों को स्थिरता और दृढ़ता देने के लिए विचारों की निरंतर प्रक्रिया शुरू की है। विचारों की निरंतरता से हमारे वे विचार स्थिर और सुदृढ़ हो जाते हैं, और जितना जो विचार सुदृढ़ और स्थिर होता है वो हमारे जीवन को उतना अधिक और उतनी ही जल्दी परिवर्तित भी कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर संकल्प पर जोर दिया जाता है। बचपन से ही छोटे छोटे संकल्प ग्रहण कराए जाते हैं जिससे कि हम अपने उन विचारों को निरंतरता देकर और अधिक सुदृढ़ बना दें। रोज मंदिर जाने का विचार, रात में भोजन नहीं करने का विचार, पानी छान कर पीने का विचार, ऐसे कितने प्रकार के विचार हैं। वे विचार अगर निरंतर हों तो उनमें दृढ़ता आती है और उनसे हमारा पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित होता है। सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि हमें किसकी संगति करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए, तो इसमें व्यक्ति की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है कि इस व्यक्ति की संगति करना चाहिए, इसकी नहीं करनी चाहिए। पर हम इससे भी थोड़ा आगे बढ़कर विचार करें तो हमें किन विचारों की संगति करना चाहिए और किन विचारों से बचना चाहिए, यह भी तो महत्वपूर्ण है। हम हमेशा निम्नतम विचारों की ही संगति करते हैं, जो विचार हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाते हैं, उन विचारों में हमारी एकाग्रता अधिक समय तक बनी रहती है, और जो विचार हमारे अपने जीवन का उत्थान करने वाले हैं, वे आते हैं और आकर के चले जाते हैं। ज्यादा देर तक हम उन्हें स्थिर और दृढ़ नहीं रख पाते हैं, इसलिए विचारों की संगति भी हम करें तो उच्च विचारों की संगति करें, जिससे कि हमारा जीवन भी ऊंचा उठे। पानी अगर धूल में गिरता है तो वही कीचड़ बन जाता है, नीम के वृक्ष में गिरता है कड़वा हो जाता है, और वही गन्ने में गिरता है तो मीठा हो जाता, और सीप में गिर जावे तो मोती बन जाता है। संगति व्यक्ति की जितना प्रभाव नहीं डालती, उतना अधिक प्रभाव विचारों की संगति हमारे ऊपर डालती है। असल में जिस तरह के विचारों का हम समर्थन करते हैं, उस व्यक्ति का भी हम साथ चाहते हैं, उस विचार वाले व्यक्ति का। इसलिए व्यक्ति की संगति बाद में होती है, उसके विचारों से सहमति या असहमति हमारे मन में पहले होती है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम विचारों को, अगर अच्छे विचारों को दृढ़ और स्थिर बनाना चाहते हैं, तो हम अच्छे विचारों को निरंतर करें, उनकी ही संगति। निरंतर करने का मतलब ये नहीं है कि सुबह से बैठ करके शुरू कर दिया, संसार में सब चीज़ें छंभंग हो रहे हैं, संसार में सब चीज़ें छंभंग हो रहे हैं, संसार में कोई शरण नहीं, संसार में कोई शरण नहीं, दिन भर ऐसा है क्या? विचारों की निरंतरता का मतलब ये है कि मैं ऐसे अच्छे विचारों पर ही विचार करता रहूं, इनका ही अभ्यास करूं, इनका ही स्मरण मेरे मन में बना रहे पूरे दिन। ये विचारों की संगति या विचारों की निरंतरता, निरंतर चिंतन की प्रक्रिया यही है कि मेरा मन जो शुभ है उसमें लगा रहता है, जो अशुभ है उसमें ज्यादा देर नहीं लगता, जो अच्छाइयां हैं उनमें मेरा मन अधिक समय तक एकाग्र रहता है, बुराइयों से चला भी जाता है तो जल्दी से मैं उसे वहां से हटा लेता हूं। ये अभ्यास है अनुपेक्षा या की भावना का। इस संसार में हम देखते हैं कुछ प्रतिकूलताएं हैं जीवन में, कुछ अनुकूलताएं हैं, और वे प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं बाहर की हैं, यह हमारा ध्यान जाता है कि जो भी प्रतिकूलताएं हैं वे कहीं बाहर से आई हुई हैं, और प्रयत्न क्या करना है, उन प्रतिकूलताओं से बचने का या कि उन प्रतिकूलताओं को हटाने का एक प्रयत्न हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है। संयोग जितने भी प्राप्त होते हैं वे सब प्रतिकूल भी हो सकते हैं और अनुकूल भी हो सकते हैं। हम प्रतिकूल संयोगों के आने पर उनको हटाने का निरंतर विचार करते रहते हैं, निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, और जो अनुकूल संयोग हैं उन अनुकूल संयोगों को जुटाने का, वे हमेशा कैसे बने रहें इस बात की हम चिंता करते रहते हैं। हमारा पूरा जीवन अगर हम विचार करें तो अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों के बीच हर्ष विषाद में ही व्यतीत होता है। अनुकूल संयोग मिलने पर हम हर्षित होकर के और उन्हें और अधिक लंबे समय तक बने रह सकें इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं, विचार करते हैं। प्रतिकूल संयोग हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, हम विषाद से भर जाते हैं, उनसे हम द्वेष करने लगते हैं, और उस द्वेष को हम बहुत लंबे समय तक बनाए रखते हैं। जो प्रतिकूलताएं हैं वे हमारे मन में अगर द्वेष पैदा करती हैं तो वह द्वेष बहुत लंबे समय तक बना रहता है, और इसी तरह जो अनुकूलताएं मेरे मन को हर्ष देती हैं उसे भी मैं बहुत लंबे समय तक बनाए रखना चाहता हूं, और इसी का नाम संसार है और कोई बड़ी चीज नहीं है। यह जो दिखाई पड़ता है यह तो लोक है, और यह जो हम निर्मित करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में हर्ष विषाद और राग द्वेष करके जो हम निर्मित करते हैं वह संसार है। और उस संसार का परिणाम क्या होता है, उस हर्ष विषाद और राग द्वेष का परिणाम क्या होता है, चतुर्गति भ्रमण पंच परावर्तन, और इसीलिए चतुर्गति भ्रमण या कि पंच परावर्तन को भी संसार कहते हैं। संसरणम इति संसारा, जिसमें निरंतर आवागमन लगा हुआ है, जिसमें जन्म मरण की पीड़ा हमें सदा भोगना पड़ती है, वो संसार है। तो इसमें तो ऐसा लगने लगता है कि ठीक है, अब हम जब संसार में हैं तो जन्म मरण की तो हमको भोगनी पड़ेगी, अब पंच परावर्तन तो करनी पड़ेंगे क्योंकि संसार में हैं हम। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यह जो जन्म मरण की पीड़ा है, यह जो पंच परावर्तन है, यह चतुर्गति भ्रमण है, उसका कारण क्या है? मेरी अपनी अज्ञानता कि प्रतिकूल और अनुकूल संयोगों में मैं हर्ष विषाद करता हूं, इससे बड़ा कोई अज्ञान हो सकता है क्या? लेकिन यह अज्ञान अज्ञान नहीं जान पड़ता। अरे भाई, हर्ष का अवसर आने पर हर्षित होने में कौन सा अज्ञान है, विषाद के अवसर आने पर विषण हो जाना, विषाद से घिर जाना, इसमें कौन सा अज्ञान है? ऐसा हमें मन में लगता है। पर यहां हम अपने जीवन में अपने जीवन को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर विचार कर रहे हैं। एक ज्ञानी मोक्ष मार्ग में वो कहलाता है जो अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में हर्ष विषाद नहीं करता, उसे ज्ञानी कहते हैं। यहां तो ज्ञानी की परिभाषा ही अलग है। यहां तो जो जितना कम राग द्वेष करे वो उतना बड़ा ज्ञानी है। यहां बातों को अच्छे से जानने समझने और समझाने वाला ज्ञानी नहीं है, यहां तो उन बातों को अपने जीवन में घटित करके अपने जीवन को राग द्वेष से मुक्त करने की विद्या सीखने वाला ज्ञानी है। तो वीतराग विज्ञानी ही यहां ज्ञानी है। संसार में सारभूत अगर है तो वीतराग विज्ञान है, और बाकी सब संसार निस्सार है। इसलिए लिखना पड़ा सुख ना ही लगारा, और उसके पहले या विधि संसार असारा। किस प्रकार असार है? इस प्रकार असार है कि मैं यहां पर प्रतिकूल संयोगों से बचने और अनुकूल संयोगों को जुटाने की निरंतर कोशिश में अभी तक कभी सफल नहीं हो पाया हूं, निरंतर असफल ही हुआ हूं। ये तो ठीक ऐसा है जैसे कोई पानी को मत करके उसमें से नवनीत निकालना चाहे। क्या कभी कोई प्रतिकूल और अनुकूल संयोगों में परिवर्तन ला सकता है? कभी वे प्रतिकूल संयोग अनुकूल लगने लगते हैं, कभी अनुकूल संयोग प्रतिकूल लगने लगते हैं, लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल तो फिर भी बने रहते हैं। मैं उनको हटाना चाहता हूं, ये तो ऐसा ही प्रयत्न है जैसे मैं पानी को मत करके नवनीत निकालूं या रेत को पेल करके मैं उसमें से तेल निकालना चाहूं तो मुझे निराशा ही मिलेगी। यहां इस संसार में मेरे सारे प्रयत्न मिथ्या हैं, इसलिए वे निष्फल होते हैं और मुझे कुछ अंत में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार ऐसा ही है। उसमें सारभूत यह नहीं है कि मैं प्रतिकूल और अनुकूल संयोगों को और निरंतर हर्ष विषाद का कारण बनाऊं। इस संसार में प्रतिकूल अनुकूल संयोग या कि राग द्वेष के अवसर आने पर मैं अगर समता धारण करूं तो वही मेरे लिए सारभूत है, बाकी सब निस्सार है। ये कहना चाह रहे, कुछ भी सारभूत नहीं है, ऐसा नहीं। इन संयोगों के लिए मैं जितना अधिक अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता हूं और वे अनुकूल नहीं बनते हैं, यही उनकी निस्सारता है। और मैं चाहूं तो इन संयोगों से ऊपर उठ जाऊं, इनके बीच समता भाव रखूं, तो मेरे जीवन में मैं बहुत आसानी से और सुख और शांति प्राप्त कर सकता हूं। सुख नहीं है संसार में, पर दिखने में तो आता है। पांच इंद्रिय और मन के अनुकूल विषय मिलने पर मुझे सुख मालूम पड़ता है। ये बात जुदी है कि वे पांच इंद्रिय और मन के विषय मुझे थोड़ी देर के बाद दुख भी देने लगते हैं। लेकिन मेरी अपनी तो आदत यह है कि मैं जो प्राप्त होने वाले दुख हैं उनको तो नहीं देखता हूं, जो थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है उसे ही देखता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि हां, सुख तो है, हम अपने बच्चों को बचपन से ही मंदिर में यह चित्र दिखाते हैं, स्वयं भी देखते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये जो चित्र बना है जिसमें ये जो व्यक्ति एक पेड़ की डालियां पकड़ के लटका हुआ है, ये कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है, इसको समझ तक नहीं है। देखो तो उस डाल को जिसे इसने पकड़ रखा है, दो चूहे निरंतर कुतर रहे हैं, एक दिन तो यह डाल टूट करके नीचे गिर ही जाएगी, और नीचे तो देखो चार अजगर विषधर इसे गिरते ही खाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और ये किस चीज में, किस नशे में गाफिल है, ऐसा हम अपने बच्चों को समझाते हैं। देखो तो इसकी अज्ञानता, अपन नहीं समझते ऐसा नहीं है, अपन भी समझते हैं, दूसरे को भी समझाते हैं, पर समझने समझाने की बात अलग है, मानने और अनुभव करने की बात बिल्कुल अलग है। और इसीलिए यह समझने समझाने की हमारी जो प्रक्रिया है विचार की, वो हमें उतना लाभ नहीं दे पाती जितना हम उस विचार को अंदर तक अनुभव कर सकें, उसे मान सकें, उसे इतना सुदृढ़ बना सकें कि वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके। कितना सा लालच है उसे, जबकि उसे बचाने के लिए स्वर्ग के देव अपना विमान लिए खड़े हैं कि आ जाओ, पर वो कहता है कि जस्ट वेट, वन ड्रॉप मोर, थोड़ा ठहरो, आता ही हूं, एक बूंद और, उसी वृक्ष में जो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है उसमें से एक एक बूंद शहद की थोड़े थोड़े समय के बाद गिरती हुई उसके मुख में आती है, उसे वह बहुत अधिक सुखकारी मचान पड़ती है। ऐसे ही यहां पर हमें इस संसार में जो भी पंचेंद्रिय और मन के विषय मिले हैं वे क्षण भर के लिए लगता है कि बहुत सुखकारी हैं, लेकिन उसके साथ जो चारों तरफ फैला हुआ दुख है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। अब इस अज्ञानता पर क्या किया जाए, किसी और से कहा जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, अपने आप को ही समझा लिया जाए कि जब इतना सब समझते हैं तब क्यों इन सुखों में हम सच्चा सुख मान बैठे, इन सुखों को छोड़ दें, छूटना तो बहुत मुश्किल है। अभी कैसे, अभी क्या हम घर जाकर के पंचेंद्रिय और मन के विषयों से विश्राम ले लें क्या? अरे तो घंटे दो घंटे लिया जा सकता है, फिर भूख लगेगी तो महाराज को भी भोजन करना पड़ता है, तो उनको भी तो पंचेंद्रिय और मन के विषय उनके भी तो संपर्क में आते हैं, आते हैं, सबके आते हैं, लेकिन सिर्फ दृष्टि ये होनी चाहिए कि सच्चा सुख इसमें नहीं है, सच्चा सुख तो मुझे इनसे ऊपर उठ करके अपने ही भीतर मिलेगा। आत्म सुख ही सच्चा सुख है, भौतिक और इंद्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है, ऐसी निरंतर भावना का नाम ही संसार भावना है। और इस संसार में मुझे अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में हर्ष विषाद के अलावा और क्या मिला है, यहां और कोई सारभूत चीज नहीं है, ऐसा विचार करने का नाम संसार अनुप्रेक्षा है। ऐसा निरंतर विचार हमारे भीतर चलता रहे, लेकिन अभ्यास होने के कारण जब जब कोई चीज हमें प्राप्त होती तो लगता है कि बहुत बढ़िया चीज मुझे प्राप्त हो गई, एक अच्छा संयोग मुझे प्राप्त हो गया, या एक बहुत सुख देने वाली चीज मुझे प्राप्त हो गई। ये भ्रम हमारे भीतर फिर भी बना रहता, ये अज्ञानता, ये मोह, ये गाफिलता, ये बनी रहती है। वो कैसे टूटे अगर हम निरंतर संसार की असारता और संसार में इन भौतिक सुखों में सच्चा सुख नहीं है इस विचार को निरंतरता देंगे, तो यह निरंतरता हमारे मोह को, हमारी गाफिलता को, हमारी अज्ञानता और आसक्ति को, इन सब को धीरे धीरे घटाने में कारण बनेंगे। संसार से बचने के बहुत उपाय हैं जो कि हम करते हैं सुबह से शाम तक, उन्हें ही हम
धर्म कहते हैं। संसार से बचने के जो उपाय हैं वे सब धर्म हैं, लेकिन अभी हम उन पर विचार नहीं कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ हम संसार के स्वरूप को जान करके उस संसार से विरक्त कैसे हों। जब तक हमारे भीतर संसार से विरक्ति नहीं होगी, तब तक जो भी हम संसार से बचने के उपाय करेंगे वे हमें संसार से बचा नहीं पाएंगे। और हम देख रहे हैं बिना संसार से विरक्त हुआ व्यक्ति कितने भी धार्मिक उपक्रम कर ले, लेकिन वे सब उसके संसार के बढ़ाने में भी कारण बन जाते हैं, क्योंकि वह संसार के वास्तविक स्वरूप को बिना समझे और उन उपायों को कर रहा है। जिस चीज में मेरी आसक्ति है उससे मैं कैसे बचूं, इसका उपाय कर रहा हूं और आसक्ति बनाए हूं। यह तो ऐसा हुआ जैसे कि अग्नि से बचने के लिए आंचल में आग के अंगारे लेकर के मैं भाग रहा हूं। ठीक ऐसा ही, एक तरफ तो मैं अपने आंचल में अपने छाती से लगाए हुए अंगारे रखे हुए हूं और कह रहा हूं कि मुझे आग से बचना और भागूं मैं। एक तरफ मैं संसार में सुख मान रहा हूं और दूसरी तरफ इस संसार से बचने के उपाय कर रहा हूं। ना, दोनों चीजें एक साथ ना होंगी। इसलिए पहले अनिवार्य है कि इससे पहले कि संसार से बचने के उपाय पर विचार किया जाए, पहले संसार की वास्तविकता पर विचार तो कर लिया जाए कि है कैसा ये, क्यों बचना चाहिए इससे, ऐसी क्या जरूरत आ गई जो मुझे संसार से बचना चाहिए। संसार ठीक है अगर, तो उससे बचने की क्या आवश्यकता है। इसलिए विचार कर रहे हैं कि जगत का यह स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वरूप का विचार करने से फिर उससे बचने की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई चीज दुखकारी मालूम पड़े तो उससे बचने का सहज भाव होता है, फिर किसी से पूछने और डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ही यदि हम संसार के स्वरूप को ठीक ठीक समझ लेवें तो फिर उससे बचने का हमारे अंदर सहज भाव उत्पन्न हो जाता है। संसार भावना हमें संसार से बचने के लिए प्रेरणा देती है। वह बचने का उपाय नहीं है, वह मात्र बचने की प्रेरणा देने के लिए एक विचार की निरंतर प्रक्रिया है। जबकि हम संसार बढ़ाने और उसी के प्रपंच में लगे रहते हैं। एक तरफ हम संसार के दुखों की चर्चा करते हैं, संसार की निंदा करते हैं, दूसरी तरफ निरंतर उसी संसार को बढ़ाने में लगे हैं। अगर एक बार संसार भावना ठीक ठीक समझ में आ जावे तो फिर संसार बढ़ाना है यह विचार ही नहीं आएगा। संसार में फिर हम कर्ता, भोक्ता और स्वामी बन करके नहीं रहेंगे। यहां से शुरुआत होगी। एकदम तो कोई संसार छोड़ नहीं सकता, छोड़ के जाओगे कहां, उसी संसार में इधर से छोड़ के उधर जाओ, उधर से छोड़ के उधर जाओ, इस चीज को छोड़ के दूसरी लेना पड़ेगी, नहीं। इसलिए ऐसा उपाय नहीं बताया। विचार सिर्फ ये है कि मुझे संसार से बचना है, और संसार से बचना मतलब राग द्वेष से बचना, संसार से बचना मतलब मेरी आसक्ति से बचना, मेरी गाफिलता से बचना, यही तो संसार से बचना। और इस अज्ञानता, गाफिलता और आसक्ति से बचने का अच्छा उपाय क्या है? कर्ता ना बने हम संसार के, भोक्ता ना बने, स्वामी ना बने, तब फिर क्या बने? अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं यह मान करके संसार में हम रहें। अगर वास्तव में संसार अनुप्रेक्षा का हमने विचार किया है तो वह संसार अनुप्रेक्षा हमारे जीवन में यह चीज घटित कर देगी। ठीक से जीने की पद्धति संसार में अगर मिल सकती है तो इसी संसार अनुप्रेक्षा के निरंतर चिंतन से मिल सकती है। ठीक से जीने का मतलब क्या है? कर्ता बन के जीना ठीक से जीना नहीं है, किसी वस्तु के स्वामी बनकर के जीना ठीक से जीना नहीं है। मैं इन सब चीजों का भोगता हूं ऐसा विचार रखते हुए जीवन जीना, ये ठीक से जीने की पद्धति नहीं है। ठीक से जीने की पद्धति तो ये है कि मैं यहां इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हूं। सब अपने अपने पुण्य पाप का फल यहां पाते हैं और पुण्य के फलस्वरूप यहां अनुकूल संयोग मिलते हैं, पाप के उदय में यहां प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। ये बाह्य अनुकूल प्रतिकूल संयोग मुझे नहीं हटाना है, मुझे अगर प्रयत्न करना है तो अपने भीतर इन प्रतिकूल संयोगों को जुटाने और अनुकूल संयोगों को जुटाने वाले कारण को दूर करना है।
ये विचार हमारे भीतर धीरे धीरे बनना शुरू होगा। अगर हम ठीक ढंग से संसार अनुपेक्षा पर विचार करेंगे तो देखिए जीवन जीने की पद्धति बहुत आसान हो जाएगी। फिर हम इस पुण्य पाप इन दोनों के चक्र में क्या स्वीकार करेंगे, पाप प्रवृत्ति से बचना, पुण्य भी मेरे लिए सिर्फ इसलिए आवश्यक है ताकि मैं पाप प्रवृत्ति से बचता रहूं। क्या बहुत जरूरी है पाप से बचने के लिए थोड़ा सा पल्ले में पुण्य, वरना पाप से बचने का विचार ही नहीं आएगा अगर पुण्य का उदय नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पाप पाप नहीं मालूम पड़ता, उनके पुण्य का उदय हो तब तो पाप पाप मालूम पड़ेगा, वरना तो पाप ही पुण्य मालूम पड़ता पाप के उदय में। ये संसार की स्थिति है, इस पर हम विचार करें और उतना पुण्य तो आवश्यक है, ऐसा ना मान के चलें कि पुण्य भी जरूरी नहीं है, पुण्य उतना आवश्यक है जिससे कि मैं पाप को पाप समझ सकूं, इतनी समझ मेरे भीतर बनी रहे, अपनी जीवन शैली में से उसे हटा सकूं और अधिक से अधिक शुभ अपने जीवन को बना सकूं, लक्ष्य मेरा शुद्ध का हमेशा बना रहे, इस पाप पुण्य और इस राग द्वेष से ऊपर उठने का। यह संसार अनुप्रेक्षा है, इस पर अपन विचार करें और अपनी जीवन पद्धति में से